दिन भर 15 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। कर्नाटक सरकार के पास बागियों को मनाने के लिए 3 दिन 18 जुलाई को सीएम कुमार स्वामी को साबित करना है बहुमत। चंद्रयान का लॉन्च तलाप, तय होगी नई तारीख। कितना चुनौती भरा है यान को चांद पर भेजना।
जमीन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन होता है चांद के गुरुत्वाकर्षण में चले जाएं।
और खास रिपोर्ट, बीते साल की बाढ़ से अब तक क्यों नहीं उबर सका है केरल का पर्यटन उद्योग।
अभी फ्लड अगस्त में हो गया था, अगस्त का बाद अपना एक 4 महीने में कोई भी नहीं आता था, सब पानी भी एकदम गंदा था।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को अधिक शक्तियां देने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। इसके तहत एनआईए भारत और भारतीयों के खिलाफ किए गए हमलों की जांच भारत से बाहर जाकर भी कर सकेगी। एनआईए साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच भी कर सकेगी। लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
कि ये कानून देश के टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारी एजेंसी को ताकत देगी। कल को कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा, कैसे एनआईए तपास जांच कैसे करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न खड़े हुए, लंका में हमारे लोग मारेंगे, बांग्लादेश में हमारे लोग मारेंगे, हमारी एजेंसी के पास कानूनी अधिकार नहीं है वहां जाकर जांच करने का, वो कानूनी अधिकार देने का लेकर आए।
स्पेन के मध्यपंथी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि धुर वामपंथी दल पोडमोस से समर्थन हासिल करने के उनके प्रयास नाकाम रहे हैं। रेडियो पर दिए गए एक साक्षात्कार में सांचेज ने पोडमोस के नेता पाब्लो इग्लेसियास पर फर्जी वार्ता करने के आरोप लगाए हैं। इग्लेसियास ने पोडमोस की ओर से नामित विशेषज्ञों को कैबिनेट में पद देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं सांचेज के समाजवादी दल ने पोडमोस के नेताओं को सीधे मंत्री पद देने का प्रस्ताव नहीं दिया है। दोनों ही दल अप्रैल में हुए चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सके थे। सांचेज ने देश के राष्ट्रवादी दलों से संसद में शक्ति प्रदर्शन में अनुपस्थित रहने की अपील की है। यदि सांचेज बहुमत हासिल नहीं कर सके तो उनके पास फिर से सरकार बनाने के लिए 2 महीने का समय होगा, अन्यथा देश में फिर से चुनाव होंगे। पोडमोस ऑनलाइन जनमत संग्रह करके लोगों से पूछ रही है कि अगले सप्ताह होने वाले विश्वास मत में वो क्या कदम उठाए। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि गुप्ता बंधुओं से संबंध रखकर उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मूल रूप से भारत से संबंध रखने वाले गुप्ता परिवार पर जैकब जुमा के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर एक न्यायिक सुनवाई के दौरान जैकब जुमा ने कहा है कि गुप्ता बंधु सिर्फ उनके दोस्त हैं। इससे पहले वो रिश्वत के बदले गुप्ता बंधुओं को सरकारी ठेके देने के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। जैकब जुमा ने कहा,
There has been a drive to remove me from the scene.
मुझे परिदृश्य से बाहर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये इच्छा है कि मैं ही गायब हो जाऊं। मैं ये समझाऊंगा कि ये सब बातें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। शायद ये महत्वपूर्ण है कि मैं इस आयोग में ही अपनी बात रखूं। ये थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन ईव ले ड्रियान ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता बचाने के प्रयास में यूरोप को एकजुट बने रहना चाहिए। ले ड्रियान और अन्य यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री ईरान समझौते को बचाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव में ये समझौता पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अमरीका को इससे अलग करके ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन की मात्रा बढ़ा रहा है। जिम्बाब्वे में महंगाई की दर बढ़कर 175% हो गई है। 10 साल पहले आई बेतहाशा महंगाई के बाद जिम्बाब्वे की सरकार को राष्ट्रीय मुद्रा को ही निरस्त करना पड़ा था। उसको ये पहली बार है कि जब इस स्तर पर महंगाई बढ़ी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर में सबसे पहले बात कर्नाटक के राजनीतिक संकट की। क्या कर्नाटक की कुमार स्वामी सरकार के पास अब भी बहुमत है या फिर सरकार बहुमत खो चुकी है, इसका फैसला अब गुरुवार यानी 18 जुलाई को होगा। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री गुरुवार को विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे, यानी कांग्रेस और जनता दल के पास बागी विधायकों को मनाने के लिए आज के दिन समेत कुल 3 दिन है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का शुक्रवार को किया गया विधानसभा में असामान्य अनुरोध आज फायदेमंद हो गया। शुक्रवार को उन्होंने स्पीकर को ये अनुरोध किया था कि वो विश्वास मत लेना चाहेंगे, क्योंकि राज्य में ये कहा जा रहा है कि उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया है। विधानसभा में उनका बयान इसलिए अजीब था क्योंकि उस दिन का विषय सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखा हुआ था। ये अनुरोध आज इसलिए काम आया क्योंकि विरोध पक्ष बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो विधानसभा की कार्यकलाप समिति का निर्णय स्पीकर रमेश कुमार ने बताया,
ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಲ।
उस दिन मुख्यमंत्री ने ये अनुरोध किया था कि वो आज की परिस्थिति में विश्वास मत लेना चाहेंगे। जब यह मामला कार्यकलाप समिति में आया था तो विरोध पक्ष के सदस्यों ने भी इस पर अपनी राय दर्ज की और इस पर यह निर्णय लिया गया है कि गुरुवार सुबह 11 बजे उनका प्रस्ताव विधानसभा में लिया जाएगा। जब तक राज्य में परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा की बैठक गुरुवार को ही होगी। ये थे रमेश कुमार के शब्द। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बीएस येडियुरप्पा ने ये कहा कि वो आज भी मुख्यमंत्री का विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में लाने के लिए तैयार थे। बीएस येडियुरप्पा ने कहा, जब मुख्यमंत्री ही मंजूर कर चुके हैं कि वो विश्वास मत लेने के लिए तैयार हैं, तो हमने हमारे प्रस्ताव पर दबाव नहीं डाला है। हम ये कह रहे हैं कि 15 विधायक तो मुंबई में हैं और 2 निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं। अभी हम वापस रिसोर्ट जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है। ये थे बीएस येडियुरप्पा के शब्द। दरअसल येडियुरप्पा का कहना यह है कि कुमार स्वामी सरकार ने बहुमत खो दिया है, क्योंकि 15 विधायक इस्तीफा देने से विधानसभा की सदस्यता का नंबर कम हो गया है। आज की परिस्थिति में 224 सदस्यों वाली विधानसभा में 107 सदस्य बीजेपी के साथ हैं और गठबंधन सरकार के साथ 101 हैं। अगर बागी विधायकों में से कुछ सदस्य वापस आ गए तो गठबंधन सरकार सांस ले सकती है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि सरकार अस्पताल के आईसीयू में है, लेकिन हर किसी की आंखें मुख्यमंत्री कुमार स्वामी पर हैं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो बीजेपी के विधायकों से भी बात कर रहे हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब बात चंद्रयान 2 की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तकनीकी वजहों से चंद्रयान 2 के लॉन्च को टाल दिया है। इसे कल रात आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना था। इसरो ने कहा है कि अब वो लॉन्च के लिए नई तारीख का ऐलान करेगा। आखिर कितना चुनौती भरा है यान को चांद पर भेजना, सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
चंद्रयान 2 को तय समय के मुताबिक आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सेंटर से 2:51 पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसरो ने एक ट्वीट के माध्यम से सूचना दी कि लॉन्च के 1 घंटे पहले लॉन्च व्हीकल में तकनीकी दिक्कत पाई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज तय चंद्रयान 2 के लॉन्च को रद्द कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। हालांकि इसरो ने यह साफ नहीं किया है कि यह तकनीकी खराबी क्या है, लेकिन वैज्ञानिक गौहर रजा कहते हैं,
बात यह है कि जब क्रायोजेनिक हम इंजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका जो ईंधन होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कहीं रखना पड़ता है। पूरा का पूरा टैंक जो है वो अंडर प्रेशर रखना पड़ता है ताकि वो लिक्विड रहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये जो पूरी असेंबली होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स असेंबली होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लीकेज सबसे ज्यादा आसान होती है।
चंद्रयान दो को शक्तिशाली रॉकेट GSLV-3 की मदद से लॉन्च किया जाना था। GSLV को फाइनल स्टेज में उड़ान भरने के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत होती है। पहले दो चरणों में वो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इन तीन चरणों के बारे में बताते हुए गौहर रजा कहते हैं,
पहले हम जमीन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन होता है कि चांद के गुरुत्वाकर्षण में चले जाएं, उसकी ग्रेविटी में चले जाएं, फिर चांद के चक्कर लगा करके जो सर्कल होता है, जो इलिप्टिकल सर्कल बन रहा होता है, वो धीरे धीरे छोटा किया जाता है और इस मिशन में वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ऑर्बिटर को चक्कर लगाना था और वहां से अलग होकर के लैंडर और फिर लैंडर से निकल करके रोवर को अपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे।
रॉकेट का धरती और चांद के चक्कर लगाना आसान नहीं, क्योंकि दोनों के गुरुत्वाकर्षण में बहुत फर्क होता है। चंद्रयान दो में ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर और एक रोवर होगा। इसी रोवर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा और वो चांद से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। चंद्रयान दो को तैयार करने में इसरो के वैज्ञानिकों को लगभग 11 साल का वक्त लगा। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक इसे दूसरे मुल्कों के मुताबिक बहुत कम कीमत पर तैयार कर पाए। फिलहाल खबरों के मुताबिक लॉन्च व्हीकल से ईंधन को निकाल दिया गया है और सुरक्षा के दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका और ईरान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच ईरान की परमाणु संधि को बचाने की कोशिशें भी जारी है। ब्रसल्स में इसे लेकर एक बैठक हो रही है जिसमें यूरोप के देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें फ्रांस के विदेश मंत्री ज्या ईव ले द्रियान ने यूरोपीय यूनियन के सदस्यों से कहा है कि उन्हें ईरान और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच हुई परमाणु संधि को बचाने की कोशिश में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा,
les européens restent unis dans cette affaire et que en particulier
यूरोप के देशों को इस मुद्दे पर एकजुट रहना चाहिए, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को ईरान को समझौते पर वापस लाने के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका का समझौते से बाहर निकलना और ईरान पर पाबंदियां लगाना एक गलत फैसला था। ये थे फ्रांस के विदेश मंत्री के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल इस संधि से बाहर आने का ऐलान किया था और ईरान पर कई पाबंदियां भी लगा दी थीं। इन पाबंदियों की वजह से ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हाल में ईरान ने संधि की कुछ शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया है। इसे लेकर यूरोपीय देश चिंतित हैं। आगे बढ़ते हैं। हालिया बरसों में हेट क्राइम यानी नफरत की वजह से किए जाने वाले अपराधों को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसे रोकने और पीड़ितों को मदद दिलाने के लिए कई संगठनों ने मिलकर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का एक मंच बनाया है। दिल्ली में आज पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BBC संवाददाता जुबैर अहमद भी मौजूद थे। अब से कुछ वक्त पहले मैंने उनसे बात की।
देखिए, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे जो नफ़रत वाली जो घटनाएं घट रही थी समुदायों के बीच में, तो उसकी रिपोर्टिंग ऐसा कहा जा रहा है कि सही तरीके से नहीं हो रही थी। और ऐसी वारदातें हुई जहां पर पुलिस ने उस जो जिसके साथ ही घटना घटी उसके पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा, ऐसा उनके खिलाफ इल्ज़ाम आया है। इसीलिए कई संस्थाएं मिलकर उन लोगों ने ये फैसला किया कि इसकी सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो सके, और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की है। और वो हेल्पलाइन अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि 1800-313-36000।
तो इससे किस तरह से मदद मिलेगी? हेल्पलाइन नंबर है, इससे क्या लोग बात कर सकते हैं, अपनी बात दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा? हाँ। क्योंकि जाना तो सरकार और प्रशासन के पास ही होगा।
एग्जैक्टली, तो इनका सिर्फ मकसद ये है कि ये आपके साथ जो घटना घट रही है जिसमें जो हेट क्राइम के तहत आता है, उसको इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन कीजिए। वो आपकी शिकायत को रिकॉर्ड करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी کے وکیل کی ضرورت پڑی اور قانونی طور پر لڑنے کی ضرورت پڑی آپ کی طرف سے, تو وہ لڑنے کا بھی کام کریں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 100 شہروں میں انہوں نے اس طرح کی ہیلپ لائن بنائی ہے. جیسا کہ ابھی جو آرگنائزرز تھے ان میں سے ایک ندیم خان ہیں, ان سے میں نے بات کی.
جو وکٹیمز اکاؤنٹ ہیں اور جو پولیس اکاؤنٹ ہیں ان میں بہت ویری کر رہا ہے.
اسی پہ میں آنے والا تھا, تو اس کا حل کیسے؟
تو ہم تو وکٹیم اکاؤنٹس کو لے کے جائیں گے اور ان کا ڈاکومنٹیشن کریں گے. پولیس پہ اب ذمہ داری ہے کہ وہ پروف کرے کہ وکٹیمز اکاؤنٹ غلط ہیں. تقریباً 100 شہروں میں وکیلوں کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے, اس کو انکریز کریں گے, کوشش کریں گے کہ ان نفرتی حملوں کو کسی طرح سے روکا جا سکے.
تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں, جن کے لیے کوئی سامنے نہیں آ پا رہا ہے, تو سول سوسائٹی کا یہ کرتویہ بنتا ہے کہ وہ سامنے آ کے ان کی مدد کریں. پھر میں نے جو وہاں پہ اسپیکرس تھے اور بھی لوگ جو آئے ہوئے تھے اس میں جو شامل ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ وارداتیں ابھی ہوئیں, ابھی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ لنچنگز کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, اور اپوروانند جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بدھی جیوی ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی کیوں ضرورت پڑی اس کی. تو ان کا یہ کہنا تھا,
دیکھیے نفرت اس ملک میں بہت پہلے سے ہے, نفرت کو اس ملک میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اس کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے اور اس کے آرگنائزیشنس ہیں, لیکن اب تک اس کو پیٹرونائز نہیں کیا جاتا تھا.
تو دیکھیے یہ ایک شروعات ہے, اب اس میں سفلتا ان کو کتنی ملے گی یہ کہنا اس وقت مشکل ہے. یہ بھی یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ جو اس طرح کی جو سول سوسائٹی کے لوگ اس میں شامل تھے, ان کی شناخت ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو اس سرکار کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور سرکار اور پولیس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی رپورٹنگ کے لیے آتا ہے تو ان کی رپورٹنگ صحیح طریقے سے درج کی جاتی ہے, تو یہاں سرکار کا بھی پکش رکھنا ضروری ہے. لیکن اب اس میں ان کے پیچھے کون ہے, پیسے کون دے رہا ہے, یہ بھی میں نے پوچھا کہ اس کی
فنڈنگ کہاں سے ہوگی, کیونکہ ایک بڑا سوال یہی ہے.
تو ان کا یہ کہنا تھا آرگنائزرس کا کہ دیکھیے یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو صرف سال میں 24,000 روپے لگیں گے جو پبلک فنڈنگ سے پوری کی جائے گی.
یہ تھے بی بی سی سنواد داتا زبیر احمد. اور اب ایک خاص رپورٹ کیرل سے. کیرل کی جی ڈی پی کا لگ بھگ 10% حصہ پریٹن سے آتا ہے اور اس پر قریب 10 لاکھ لوگ نربھر ہیں. سالانہ قریب 30,000 کروڑ روپے کے پریٹن ادیوگ کو بیتے سال آئی باڑھ نے بری طرح پربھاوت کیا ہے. اب حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن پرانی استھتی حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے. کیرل کے ایل ایپی سے بی بی سی سنواد داتا سلمان راوی کی رپورٹ.
یہ ہیں کنن جو کیرل کے ایل ای پی میں ایک ٹور آپریٹر ہیں.
دا گیسٹ ول اراائیو ود ان 20 منٹس. ود ان 20 منٹس دا گیسٹ ول اراائیو.
کنن تھوڑا جلدی میں ہیں, انہوں نے کئی مہینوں بعد اپنی ہاؤس بوٹ کو پھر سے سجایا ہے. ان کے سفر میں ہم بھی شامل ہو گئے.
دا 11 از دا چیک ان ٹائم. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دا گیسٹ.
کنن بتا رہے ہیں کہ ان کا ہاؤس بوٹ ندی کے کنارے پر ایک ریزورٹ کی طرف جا رہا ہے. اس ریزورٹ سے وہ اپنے گیسٹ کو اٹھائیں گے اور اپنے ہاؤس بوٹ پر سوار کریں گے. یہ ہاؤس بوٹ ان کے گیسٹ نے بک کر رکھا ہے. مانسون کے آتے ہی پریٹکوں میں کیرل کے خوبصورت بیک واٹرز اور ہاؤس بوٹ کا آنند لینے کی ہوڑ لگ جاتی ہے. یہ ہاؤس بوٹ کسی 5 ستارہ ہوٹل سے کم نہیں ہے. لگ بھگ 1 سال کے بعد یہاں کی رونق دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے, جس سے لوگ خوش ہیں. انہی میں سے ایک بنگلور سے آئے سمت بھی ہیں.
میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں کہ فلڈ سے آگ کے بعد کوئی خراب ہوگا. اٹس لائک نارمل تھا, مطلب جیسے پہلے تھا ویسے ہی ایکسپیرینس تھا. مطلب اور ایسا لگا ہی نہیں کہ فلڈ سے آیا تو اس کے ایسے کوئی دقت ہے, مطلب کہ کوئی کچھ.
کیرل آنے سے پہلے ہی پریٹک انہیں آن لائن کے ذریعے بک کر لیتے ہیں, مگر پچھلے سال آئی باڑھ کے بعد کیرل میں پریٹن بری طرح پربھاوت ہوا ہے. سی کے جوزف ہاؤس بوٹ اونر سمیتی کے ادھیکش ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ پچھلا 1 سال ان کے لیے سنگھرش بھرا رہا.
پوری سمر بہت افیکٹ ہوا ہوا ہے پہلے سا فلڈ کا بات. ابھی تک اردہ بھی اپنا کسٹمر نہیں آ رہا ہے, بہت نقصان ہو گیا. ابھی فلڈ اگست میں ہو گیا تھا, اگست کا بات اپنا 1-4 مہینے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا ادھر. سر پانی بھی ایک دم گندا تھا, یہ پورا ادھر پورا پانی آ گیا. وہ گائے وغیرہ وغیرہ بہت اس طرح پانی میں اسمیل آتا تھا, اس کا وجہ سے نہیں آتا. ابھی پانی میں کوئی تکلیف نہیں ہے. کرناڈ کا اندر ایک آدمی مرا نے اتنا کام کیا تھا, سب بوٹ جا کے آدمی کو لے کے آیا ادھر. کم سے کم 5 لاکھ آدمی کو آلپی کٹناڈ سے آلپی ادھر لا کے لے کے آیا تھا.
باڑھ راحت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہاؤس بوٹ کے مالک آرتھک روپ سے کمزور ہو گئے ہیں. एक ऐसे ही हाउस बोट के मालिक हैं शीने जॉर्ज।
एलपी बैकवाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैकवाटर टूरिज्म आफ्टर द सीवियर फ्लड्स।
शीने जॉर्ज कह रहे हैं कि एलपी का बैकवाटर विश्व का सबसे बड़ा बैकवाटर पर्यटन है। बाढ़ के बाद हम अब वापस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक साल से हम परेशानियां झेल रहे थे। हाउस बोट में काम करने वाले लगभग 3,000 कर्मचारियों को पैसा देने को नहीं था। व्यवसाय प्रभावित हुआ। उस समय पर्यटन बिल्कुल शून्य पर आ गया था। हम उबर रहे हैं किसी तरह। हम आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे हैं। ये थे शीने जॉर्ज के शब्द। वहीं सरकार का दावा है कि अब पर्यटन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में भी केरल में इसको बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया है। भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी ITDC के निदेशक के पद्म कुमार कहते हैं,
फर्स्ट सिक्स मंथ्स फ्लड लॉट ऑफ फील्ड्स अफेक्टेड बट केरला स्लोली एंड ग्रेजुअली।
के पद्म कुमार कह रहे थे कि बाढ़ के पहले 6 महीनों में पर्यटन तो बिल्कुल प्रभावित रहा, लेकिन केरल धीरे धीरे इससे उबर रहा है। अब चीजें वापस लौटने लगी हैं। देश के अन्य हिस्सों से और विदेशों से भी पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पिछले 2-3 महीने काफी उत्साहजनक रहे। ये थे के पद्म कुमार के शब्द। केरल के 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की आजीविका पर्यटन पर आश्रित है। इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा देने की घोषणा भी की है। लोगों को लगता है कि शायद इससे भगवान का अपना देश पहले की तरह खिलखिला उठे। सलमान रावी, BBC, LAP, केरल।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज सोमवार है और आपको इंतजार होता है अपनी चिट्ठियों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूँ BBC के स्टूडियो में राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
जी, शुरू करें।
बिल्कुल, और शुरुआत अगर कविता से हो तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये लक्ष्मण दास शर्मा जी ने कविता लिखी है। ये मंडलाना नारनौल हरियाणा से लिखते हैं और लिख रहे हैं कि रखती खबरों पर नजर पैनी ऐसी हस्ती गुरप्रीत सहनी, जिसका स्वर मीठा वह जोशीला, सबको प्रिय सिंह सुशीला, जिनकी खूबी का रहता जिक्र वे हैं श्रीमान समीरात्मज मिश्र, जिनका दुनिया जहां सबको भाए ऐसा शख्स है वात्सल्य राय।
क्या बात है। और आपका बहुत शुक्रिया हरियाणा से हमें ये पत्र लिखने के लिए, और वो भी ऐसी तुकबंदी के साथ।
आगे अगर बढ़े तो आप देखिए राजेश जी, इन्होंने ना बकायदा स्टिकर पर अपना नाम लिखा हुआ है ताकि कोई भी गलती ना हो नाम पढ़ने में। और
आनंद मोहन बैन, और हाँ, ये हैं छत्तीसगढ़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है, भिलाई से, पोस्ट सुपेला।
हाँ, और लिखाई थोड़ी सी उनकी ऐसी है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, शायद इसीलिए उन्होंने स्टिकर यहाँ पर चिपकाकर हमें भेजा है। लिखा इन्होंने ये है कि नौकरी के रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर जो चर्चा हुई इंडिया बोल में, वो उन्हें पसंद तो आई, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि श्रोताओं को बातचीत कम करने का मौका मिलता है और विशेषज्ञों को ज़्यादा मौका मिलता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया बोल का अर्थ ही है कि लोग बोलें।
लोग बोलें, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम लोगों को मौका देते हैं कि वो फ़ोन करें, लेकिन जो विशेषज्ञों की बात सुनकर जो जानकारी आपको मिल सकती है वो आम लोगों के बोलने से शायद न मिले। यही वजह है कि हमें ये संतुलन रखना पड़ता है कि इंडिया बोल में इंडिया के लोग भी बोलें और जो सुन रहे हैं उनको कोई सार्थक बात भी सुनने को मिले, जो विशेषज्ञ से मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है।
आगे अगर बढ़ें तो ये पीला खत प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने भेजा है। ये कैथनपुरवा सातनपुरवा से अमेठी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि अपूर्व कृष्ण जी का सभा संचालन जो दिन भर में था वो उन्हें पसंद आया, नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट अच्छी लगी, लेकिन रिपोर्ट कौन सी है इस पर उन्होंने कुछ बताया नहीं है, और समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट भी उनको शानदार लगी, लेकिन उनकी कौन सी रिपोर्ट शानदार लगी वो भी उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। इंदु पांडे जी का खेल समाचार बहुत पसंद आया, इन्होंने लिखा है कि आपकी राय का संचालन भी वो बहुत अच्छे से करती हैं, तो ये नाम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं।
जी, और ये है प्रमोद जी की चिट्ठी, जो कि काफ़ी नियमित हमारे श्रोता हैं और ये श्रोता रेडियो श्रोता संघ का संचालन भी करते हैं, और ये अक्सर हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं जिसमें वो तारीफ भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। जी,
अब अगर ईमेल्स की तरफ नजर डालें तो सबसे पहला ईमेल है सादिक आजमी का सऊदी अरब से, और ये लिखते हैं, मिशन मेघदूत की चोट पर पाक की 1999 करगिल पर अहमकाना हरकत और विश्व के समक्ष पुनः जलील होते पलों के साथ भारत से शिकस्त का कालिक पोतवाते क्षणों को इतने सुंदर रूप से रेहान फजल साहब ने प्रस्तुत किया कि विवेचना सुनना सार्थक हो गया, और सच कहूं तो धन्यवाद रूपी शब्द नहीं मिल रहे हैं।
आपने पत्र लिखा, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। हम आपको यहीं पर अपने सभी श्रोताओं को बताएं कि बहुत जल्दी कारगिल की जो लड़ाई थी उसकी जो एनिवर्सरी आ रही है उस पर रेहान फजल की एक पूरी सीरीज़ आप सुनेंगे, जिसमें कई विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आएंगे।
और महेंद्र सहारन लिखते हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, और वो ये लिख रहे हैं कि बीबीसी की पूरी टीम को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। तो नमस्कार आपको। और ये लिख रहे हैं कि केन्या से भारत आकर 200 रुपए कर्ज अदा करने वाले रिचर्ड न्यगका की कहानी बीबीसी हिंदी पर मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी।
वाकई ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, और ये बताती है कि कैसे बुरे वक्त में जो कोई व्यक्ति आपके काम आता है उसकी कृतज्ञता को अगर आप याद रखते हैं, और ये बात जब लोगों को पता चलती है तो ये बात बहुत सारे लोगों के दिलों को छू गई, और इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर हजारों लोगों ने पढ़ा और सराहा है। पत्र लिखने के लिए आपका शुक्रिया।
और ये पत्र लिखा है गौतम दत्ता ने किशनगंज बिहार से। ये लिखते हैं कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में लोगों का दिल जीता, इस कथनी से आदेश कुमार गुप्त ने अपनी खेल डायरी को समाप्त किया, उन्हें बेहद पसंद आया। इस रोमांचक खेल को जितनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया शायद कोई और नहीं कर सकता था।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके पत्र के लिए, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, आपसे विदा लेने का समय हो गया। आपकी राय में बस इतना ही। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग में, जहां पर एक साल बाद रिंग में उतरे भारतीय बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने लगातार 11वीं जीत दर्ज की है। 33 साल के विजेंद्र ने रविवार को 8 राउंड के सुपर मिडिलवेट कॉन्टेस्टेंट माइक स्नाइडर को नॉकआउट किया। यह मुकाबला अमेरिका में हुआ। WBO ओरिएंटल और एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन विजेंद्र को अब तक पेशेवर मुक्केबाजी में कोई हरा नहीं सका है। विजेंद्र का यह पहला US प्रोफेशन मुकाबला था। विजेंद्र ने अपने प्रो बॉक्सिंग करियर में अब तक 11 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की। 8 मुकाबलों में तो उन्होंने नॉकआउट से जीत हासिल की है। इससे पहले विजेंद्र ने 23 दिसंबर 2017 को जयपुर में जीत दर्ज की थी, तब उन्होंने अफ्रीकन चैंपियन अर्नेस्ट अमूजू को हराया था। उन्होंने इस जीत के साथ अपना WBO ओरिएंटल और एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब बचाया था। प्रो बॉक्सिंग में विजेंद्र का सफर 10 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक उन्हें जीत ही मिली है। तो वहीं रेसिंग ट्रैक पर हीमा दास भारत की उम्मीद बनकर आई हैं। भारतीय धावक हीमा दास ने 12 दिन के अंदर तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। हीमा ने शनिवार को चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.43 सेकंड में पूरा किया। वहीं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद अनस ने भी 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 45.21 सेकंड में रेस पूरी की। दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले हीमा ने 7 जुलाई को पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा कर गोल्ड मेडल जीता था। हीमा ने 4 जुलाई को भी पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में गोल्ड जीता था। पोजनान में हीमा ने पहली बार 200 मीटर रेस में हिस्सा लिया था। उन्होंने 23.65 सेकंड में उस रेस को पूरा कर गोल्ड जीता था।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को अधिक शक्तियां देने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। स्पेन के मध्यपंथी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि धूर वामपंथी दल पोडेमॉस से समर्थन हासिल करने के उनके प्रयास नाकाम रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा ने कहा है कि गुप्ता बंधुओं से संबंध रखकर उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन ईव लेड्रियन ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता बचाने के प्रयास में यूरोप को एकजुट बने रहना चाहिए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी रविशंकर कुमार के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।